पृष्ठ संख्या 61, अध्याय 4, उर्दू गद्य की प्रारंभिक रूपरेखा। पिछले अध्यायों में पढ़ने के बाद यह अनुमान लगाना कठिन न होगा कि दूसरे साहित्यों की भांति उर्दू के आदिकाल में भी गद्य का विकास रुका रुका सा रहा। इसके कारण है सामाजिक गतिरोध, भावनाओं में आर्थिक स्थिति से उत्पन्न होने वाला ठहराव, बने बनाए मार्गों को छोड़ने का भय और विचारों के आदान प्रदान के साधनों की कमी के कारण साहित्य के उस रूप का विकास न हो सका जिससे ज्ञानवर्धन एवं विचारों का संचार होता है। साहित्यिक दृष्टि से भी गद्य को पद्य के मुकाबले में मान्यता बहुत बाद में प्राप्त होती है। फिर भी उर्दू भाषा एवं साहित्य के प्रारंभिक रचनाकाल में उसे सूफियों के बोल से जो सहारा मिला उसे गद्य के विकास का आरंभ कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यद्यपि दक्कनी उर्दू की रचनाओं में काव्य साहित्य को ही प्रभुत्व प्राप्त रहा, परंतु उसी के साथ साथ गद्य की रूपरेखा भी बनती रही। इसका उल्लेख थोड़ा बहुत पिछले पृष्ठों में भी आ चुका है, किंतु उसका विस्तार आवश्यक है। दक्कनी उर्दू में ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज मृत्यु 1422 ईस्वी की कई गद्य रचनाओं विराजुल आशकीन, शिकारनामा और तिलावतुल वजूद का वर्णन करते हुए इस बात की ओर संकेत किया गया था कि इनको साहित्यिक दृष्टि से देखने के बजाय बनती हुई भाषा और हिंदू मुस्लिम विचारधारा के सामंजस्य की दृष्टि से देखना चाहिए। इसको रचना की प्रेरणा भी साहित्य से नहीं वरन अपने धार्मिक विचारों को अपने अनुयायी व्यक्तियों तक पहुंचाने की इच्छा से मिली थी। यही बात 15वीं शताब्दी के दूसरे सूफी लेखकों के संबंध में भी कही जा सकती है। उस समय के साहित्य की खोज करने वालों और भाषा शास्त्रियों ने इसमें संदेह प्रकट किया है कि इन रचनाओं को ठीक उसी युग का माना भी जाए या नहीं, क्योंकि उनकी हस्तलिखित पांडुलिपियाँ तैयार करने वालों ने समय समय पर शब्दों और उनके उच्चारणों में परिवर्तन कर दिए हैं। गेसु दराज के पुत्र अकबर हुसैन ने भी गद्य में कुछ रचनाएं की हैं जो विषय और शैली दोनों में अपने पिता की रचनाओं से मिलती जुलती हैं, किंतु एक ही वंश के तीन सूफी विद्वानों मीरानजी शम्मुल उशक, बुरहान उद्दीन जानम और अमीन उद्दीन आला ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए वह न केवल अपने दार्शनिक विचारों के आधार पर बल्कि साहित्यिक दृष्टि से भी सराहनीय हैं। इन लेखकों की पृष्ठ संख्या 62, काव्य रचना का उल्लेख हो चुका है। संक्षेप में गद्य के लेखकों पर विचार करना भी उचित होगा। शम्सुल उशक मक्का अरब में पैदा हुए थे। 34 वर्ष की आयु में भारत आए और बीजापुर में रहने लगे। वही उनकी धार्मिक कृतियों का क्षेत्र था। गद्य में उनकी प्रसिद्ध रचना शरहे मरकबुल कुबूल है जो एक अरबी रचना का अनुवाद है। उनके सुपुत्र बुरहान उद्दीन जानम के अनेक गद्य लेख भी मिलते हैं, जैसे कलमतुल हकायक, हस्त मसायत और जिक्रे जली, किंतु अभी तक केवल कमलतुल हकायक ही प्रकाशित हो सकी है। इसमें फारसी और दक्कनी घुली मिली हुई है। उनके बेटे अमीन उद्दीन आला ने काव्य रचनाओं और गद्य लेख से उस परंपरा को जीवित रखा जो गेसु दराज से शुरू हुई थी। वह अपने पिता की मृत्यु के कुछ महीनों के बाद पैदा हुए और अपने अनेक शिष्यों और मुरीदों के साथ सूफी विचारों का प्रचार करते रहे। उनके लेखों पर भी उस समय की भक्ति विचारधारा का गहरा प्रभाव था। गद्य में उनकी प्रसिद्ध रचना गंजे खफी है, किंतु उनकी कई अन्य रचनाओं की खोज भी की जा चुकी है जो सब की सब सूफी विचारधारा के प्रचार की दृष्टि से लिखी गई थी। आला ने भी अपनी भाषा को हिंदी और दक्कनी ही कहा है, जैसा कि स्वाभाविक भी था। उनकी भाषा उनके पूर्वजों से अधिक शुद्ध और सरल है और कुछ साहित्यिक रोचकता भी रखती है। उनके शिष्यों में मीरानजी खुदनुमा, मुहम्मद कादरी नूरदरिया, मीरान हुसैनी, शाह, मुअज्जम के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें प्रत्येक व्यक्ति गद्य एवं पद्य रचनाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। इसमें संदेह नहीं कि इन लेखकों और इनकी रचनाओं की अपनी विशेषताएं हैं, और साहित्य या संस्कृति का कोई इतिहासकार उनकी ओर से आंखें बंद नहीं कर सकता। परंतु ऐसी रचना जिसे साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कहा जा सके, मुल्ला वजही की सबरस है, जो 1635 ईस्वी में लिखी गई। यह एक महान पुस्तक है जो एक प्रसिद्ध फारसी पुस्तक पर आधारित होते हुए भी बिल्कुल नई सृजनात्मक कृति कही जा सकती है, क्योंकि लेखक ने अनेक गूढ़ दार्शनिक समस्याओं को साहित्यिक भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि उसके लेखक की कलात्मक अनुभूति का प्रमाण बन गई है। गद्य की जिस शैली में रचना की गई है, हम उसको तुकांत गद्य कह सकते हैं। इसमें प्रेम और सौंदर्य, बुद्धि और हृदय को प्रतीक बनाकर जीवन के सभी नैतिक विषयों पर एक रहस्यमय कथा द्वारा प्रकाश डाला गया है। वास्तव में यह एक सूफियाना पुस्तक है, परंतु भाषा विज्ञान और साहित्य की दृष्टि से इसको आज भी प्रथम श्रेणी की पुस्तकों में गिना जाएगा। वजही ने अपनी पुस्तक में कहीं भी इस बात की ओर संकेत नहीं किया है कि यह कहानी कहाँ से ली गई है, बल्कि आरंभ में यह लिखा है कि यह मेरी मौलिक कृति है। उसने बड़े गर्व से यह लिखा है कि पृष्ठ संख्या 63, आज लगन तक कोई इस जहान में, हिंदुस्तान में, हिंदी जवान में, इस लताफत, इस छंदा सो नजम हौर नस्त्र मिलाकर गुलाकर नहीं बोलिया। और इस दृष्टि से उसका यह दावा कुछ ऐसा गलत भी नहीं है कि ऐसी कलात्मक और सुंदर भाषा में इससे पहले उर्दू या हिंदी गद्य में कोई पुस्तक नहीं लिखी गई। सबरस उर्दू और हिंदी दोनों में प्रकाशित हो चुकी है। इसके अध्ययन से यह बात प्रमाणित हो सकती है कि न केवल कथा वस्तु की दृष्टि से वरन विचार शैली और साहित्यिक कलात्मकता की दृष्टि से भी यह अनोखी और असाधारण कृति है। इसके रहस्यमय विचारों के पीछे प्रेम और नीति, युद्ध और शांति, रीति और रिवाज की वही परंपराएं हैं जो मध्ययुग के एशिया और भारत में प्रचलित थी। दक्षिण में उर्दू साहित्य के विकास में जो बातें सहायक हुई, उनका उल्लेख दूसरे अध्याय में किया जा चुका है, परंतु वह गद्य की उन्नति का युग नहीं था। इसलिए पद्य कृतियों के मुकाबले में गद्य रचनाएं बहुत कम हैं। अच्छे गद्य का विकास संसार के प्रत्येक साहित्य में उस समय होता है जब जीवन प्रगति का कुछ मार्ग तय कर लेता है। वजही के बाद उस समय तक की दक्षिण में गद्य रचनाएं की जाती रही, जब तक कि औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में दक्षिण भारत को अपने राज्य क्षेत्र में मिला नहीं लिया था। इस बीच में अधिकतर धार्मिक पुस्तकें लिखी गईं, क्योंकि धर्म उस जीवन का बड़ा अंश होता है जिसको वैज्ञानिक और औद्योगिक उन्नति के अवसर प्राप्त ना हो। इसके अतिरिक्त यह भी हो सकता है कि आरंभ में विजयनगर के प्रबल हिंदू राज के सम्मुख अपना गौरव और महत्व सिद्ध करने की दृष्टि से अपने को दृढ़ बनाने के लिए धर्म का सहारा लेना आवश्यक मालूम हुआ हो। पर ऐसा नहीं है कि दूसरे विषयों पर पुस्तकें लिखी ही नहीं गईं। तूतीनामा के नाम से पंचतंत्र और हितोपदेश की प्रसिद्ध कहानियों को दक्षिणी उर्दू में परिवर्तित किया गया। यह कहानियाँ फारसी अनुवादों पर आधारित थीं। इनकी भाषा भी सबरस की भांति दक्षिणी उर्दू है, परंतु वैसी सुंदर नहीं है। 18वीं शताब्दी में जब देश का बड़ा भाग एक बार फिर टुकड़े टुकड़े हो गया, तो दक्षिण के अरकाट, मैसूर और हैदराबाद के राज्य स्थापित हुए, और दक्षिणी उर्दू की पुरानी परंपराओं के कारण अरकाट, मद्रास और मैसूर में उर्दू फैली। यही नहीं, बल्कि मराठी भाषा पर उर्दू ही के द्वारा फारसी का प्रभाव पड़ा, जो इस समय तक बाकी है। यही समय था कि उत्तर भारत में भी उर्दू साहित्य की जड़ें फैल रही थीं। पिछले अध्यायों में उसके विकास और उन्नति का वर्णन हम कर चुके हैं, यहाँ केवल गद्य रचना की प्रगति को देखना है। भाषा वैज्ञानिकों ने दिल्ली के आसपास की उर्दू भाषा के संबंध में जो कुछ लिखा है, उससे ज्ञात होता है कि बोलचाल के लिए यह भाषा एक प्रगतिशील रूप में प्रचलित थी, और बहुत पहले से ही आपस में व्यवहार में बहुत सी ऐसी कहावतें, मुहावरे और वाक्य पैदा हो गए थे जो जनता से उनके संबंध का पता देते हैं। इसका पृष्ठ संख्या 64 सबसे अच्छा उदाहरण मीर जाफर जट्टाली की कविताओं और गद्य के छोटे छोटे टुकड़ों में मिलता है। जट्टाली केवल हास्य रस के मनोरंजन से परिपूर्ण कृतियां ही नहीं दे रहे थे, बल्कि अश्लील और निर्लज भावनाओं के प्रकट करने में भी संकुचाते नहीं थे। किसी की प्रशंसा करते थे, किसी की निंदा। जट्टाली औरंगजेब और बहादुर शाह प्रथम के युग के कवि हैं। फारसी और बोलचाल की मिलीजुली भाषा में वह अपनी कविताएं और लेख लिखते थे। उनकी रचनाओं के गहरे विवेचन से उस युग की दुर्दशा का अनुमान लगाया जा सकता है। वह बादशाह से लेकर सेना तक किसी का भय नहीं करते थे और जो कहना चाहते थे कह डालते थे। भाषा का अध्ययन करने वालों के लिए उनके लेखों और कविताओं का अध्ययन बहुत ही लाभदायक होगा। जट्टाली की रचनाओं का संग्रह अनेक बार प्रकाशित हो चुका है, लेकिन अपनी अश्लीलता के कारण बहुत कम पढ़ा जाता है और साहित्य के इतिहासकार भी उसका नाम नहीं लेते। उर्दू साहित्य के प्रचलित इतिहासों में उर्दू गद्य का आरंभ भी मुहम्मद शाही युग 1719 से 1748 ईस्वी से माना जाता है और सबसे पहली पुस्तक फजली की करबल कथा समझी जाती है। फजली का नाम फजल अली था। उन्होंने अपना यह ग्रंथ 1731 ईस्वी में तैयार किया, फिर स्वयं 1747 ईस्वी में उसमें संशोधन किए। मुल्ला हुसैन वाइज काशिफी द्वारा लिखित प्रसिद्ध फारसी पुस्तक रौज तुश शुहदा मुहर्रम में होने वाली धार्मिक सभाओं में बहुत पढ़ी जाती थी, परंतु फारसी में होने के कारण बहुत से लोगों की समझ में नहीं आती थी। इसलिए फजली ने उसे उर्दू में परिवर्तित करके करबल कथा यानी दह मजलिस रखा, जो 1732 से 33 की रचना है। पहले भ्रम था कि उक्त पुस्तक नष्ट हो गई है, परंतु अब यह हेमवर्ग जर्मनी से खोज निकाली गई है और बड़े शोधपूर्ण ढंग से प्रकाशित हो गई है। इसमें करबला की शोकपूर्ण घटना और इमाम हुसैन का बयान ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से किया गया है। फजली उस समय तक उर्दू की किसी गद्य रचना से परिचित न थे। वह अपनी रचना को प्रथम रचना मानते थे। फजली का एक उर्दू मर्सिया भी उपलब्ध है। कई विद्वानों ने यह संदेह प्रकट किया है कि फजली भी दक्षिण के रहने वाले थे, क्योंकि एक आध मुहावरे उनके यहाँ भी वही मिलते हैं जो दक्षिणी उर्दू में पाए जाते हैं, परंतु इसे कोई निश्चयात्मक प्रमाण नहीं कहा जा सकता। उनकी शैली दक्षिणी लेखकों की शैली से भिन्न है। अगर वह दक्षिणवासी होते तो उन्हें वहाँ की रचनाओं और अनुवादों का ज्ञान अवश्य होता। फजली की भाषा में फारसी अरबी के शब्द बहुत आते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि एक धार्मिक ग्रंथ में उन शब्दों का प्रयोग अनिवार्य था जिनको उसके पाठक जानते रहे होंगे। इस संबंध में सबसे अधिक विचारणीय बात यह है कि उत्तरी भारत में जो उर्दू विकसित हो रही थी वह दिल्ली से निकट होने और ईरानी भाषा और साहित्य से प्रभावित होने के कारण आसानी से फारसी अरबी शब्दों को स्वीकार कर लेती थी, क्योंकि सिकंदर लोदी और टोडरमल की आज्ञा अनुसार सरकारी कर्मचारियों का फारसी जानना आवश्यक था। पृष्ठ संख्या 65। इसमें संदेह नहीं कि इसका प्रभाव बोलचाल की भाषा पर पड़ा होगा। शाही और जागीरदारी जीवन में काव्य को जो महत्ता प्राप्त होती है वह गद्य को नहीं होती। फिर समय भी वह था जो पतन की ओर अग्रसर था। उदार विचारों का युग समाप्त हो चुका था और अगर कोई कभी किसी गंभीर विषय पर कुछ लिखना भी चाहता था तो फारसी में लिखता था। फिर भी उर्दू साधारण जीवन में अपनी जगह बनाती और आवश्यकताओं के प्रकट करने में अपना काम करती रही। मिर्जा सौदा ने जब अपने मर्सियों का संग्रह तैयार किया तो उस पर उर्दू में एक भूमिका लिखी। उनकी गद्य रचना का यह नमूना उनके संग्रह के साथ बारंबार प्रकाशित हो चुका है। इसमें फारसी अरबी के बहुत शब्द हैं और फारसी गद्य के अनुसरण में इसका गद्य भी तुकांत है। सौदा ने मीर तकी मीर की एक सुविख्यात मसनवी शोले इश्क को भी पद्य से गद्य में परिवर्तित किया, परंतु अब उसकी पांडुलिपि भी नहीं मिलती। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि कहानी लिखते समय सौदा किस प्रकार की गद्य रचना करते थे। 18वीं शताब्दी के अंत से कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली में कुरान शरीफ के दो अनुवाद हुए, शाह रफीउद्दीन और शाह अब्दुल कादिर। दिल्ली के एक प्रसिद्ध विद्वान और धर्मगुरु शाह वली उल्लाह के पुत्र थे और अपने पिता की भांति धर्म प्रचार में लगे हुए थे। शाह रफीउद्दीन ने कुरान का अनुवाद 1786 ईस्वी में और शाह अब्दुल कादिर ने 1790 में किया। इन अनुवादों का उद्देश्य इसके सिवा और कुछ न था कि जो लोग अरबी नहीं जानते थे वह भी इसका पाठ ज्ञानपूर्वक कर सकें। दोनों अनुवादों की भाषा ऐसी है जिसे बहुत सरल एवं सुगम नहीं कह सकते, परंतु यह प्रारंभिक यत्न थे और इनका महत्व साहित्यिक से अधिक ऐतिहासिक के रूप में है। बाद में कुरान शरीफ के बहुत से अच्छे अच्छे अनुवाद उर्दू में हुए जिनको उर्दू साहित्य में भी ऊंचा स्थान दिया जाता है। 16वीं-17वीं शताब्दी में उर्दू सारे भारतवर्ष में फैल रही थी और अब जो प्राचीन साहित्यिक रचनाओं की खोज की जा रही है, जो अनेक प्रदेशों में उसके अनुपम चिन्ह मिलने लगे हैं, बिहार का प्रदेश इसमें पीछे नहीं है। वहाँ भी गद्य एवं पद्य की रचनाएं 17वीं शताब्दी से मिलने लगी हैं। यह अवश्य कि इस प्रकार की रचनाएं अधिकांशतः धार्मिक और सूफियाना हैं, किंतु शाह अहमद फुलवारी की गद्य रचना सीधा रास्ता, जहूर के रिसाले निजाम और मुहम्मद इसहाक के रिसाले मुआयना को अवश्य महत्व देना चाहिए, क्योंकि इनसे बिहार में उर्दू भाषा के विकास का पता चलता है। वहाँ के कवियों ने, जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, मर्सिया और गज़ल की श्रेष्ठ रचनाएँ छोड़ी हैं। उनमें शाह आयत उल्लाह जौहरी मृत्यु 1795 ईस्वी, जोशीश मृत्यु 1800 ईस्वी, तपमा और गुलाम, पृष्ठ संख्या 66, रासिख मृत्यु 1823 ईस्वी पर शोध कार्य भी हो चुके हैं और उर्दू साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान दिया जा चुका है। उत्तरी भारत में यह युग अत्यंत रचनात्मक दिख पड़ता है। धार्मिक रचनाओं के अतिरिक्त 1775 ईस्वी के लगभग एक फारसी कथा ग्रंथ का अनुवाद मीर हुसैन अता तहसीन ने किया, जिसे उस युग की श्रेष्ठ रचनाओं में गिना जाता है। ग्रंथ का नाम नवतर्ज मुरसा है और फारसी के किस्से चहार दरवेश से उर्दू में परिवर्तित किया गया है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ के लेखक अमीर खुसरो थे, परंतु यह बात उचित नहीं दिखती, क्योंकि जिन विद्वानों ने अमीर खुसरो की रचनाओं का गवेषणात्मक अध्ययन किया है, उनको इस नाम की कोई पुस्तक अमीर खुसरो के यहाँ नहीं मिली। वास्तव में इसके लेखक मुहम्मद मासूम थे, जिन्होंने इसे हिंदुस्तानी फारसी में लिखा था। तहसीन इटावा के रहने वाले थे, एक अंग्रेजी फौजी अफसर के मीर मुंशी थे, उसके संग कलकत्ता में रहे। जब वह अपने देश चला गया तो तहसीन पटना होते हुए फैजाबाद पहुँचे और वहाँ नवाब शुजाउद्दौला के दरबार से उनका संबंध हो गया। तहसीन को फारसी की अच्छी जानकारी थी और फारसी में भी अनेक पुस्तकें लिख चुके थे, परंतु वह उर्दू साहित्य के इतिहास में अपने इसी अनुवाद के कारण जीवित हैं जिसका उल्लेख ऊपर हुआ है। नवतर्ज मुरसा की शैली कठिन फारसी अरबी शब्दों से भरी हुई है। अलंकारों का इतना प्रयोग किया गया है कि साधारण बोलचाल की भाषा का जानने वाला उसे समझ नहीं सकता। कहीं कहीं तो वाक्य फारसी हैं, केवल क्रिया के रूप में आने वाले शब्दों का अनुवाद कर दिया गया है। पूरी पुस्तक तो नहीं, परंतु इसका अधिकांश इसी विचित्र शैली में लिखा गया है। यह रचना कई बार प्रकाशित हो चुकी है। इस समय तक दिल्ली और अवध में उर्दू के दो केंद्र बन चुके थे और इन स्थानों पर काव्य रचना के साथ साथ गद्य पर भी ध्यान दिया जा रहा था। उर्दू के कई शब्दकोश भी लिखे गए जिनसे भाषा के विकास का पता चलता है। इस संबंध में यूरोप के जिन विद्वानों ने काम किया वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु इसका उल्लेख गद्य के विकास से संबंधित एक दूसरे अध्याय में होगा। यहाँ कुछ अन्य रचनाओं का वर्णन उचित होगा जो गद्य के विकास की कड़ी कही जा सकती हैं। अदव्याते उर्दू हैदराबाद के पुस्तकालय में एक ग्रंथ है जिसमें तैमूर के भारत पर आक्रमण करने से लेकर 1780 ईस्वी तक की ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख है। ऐसा जान पड़ता है कि लेखक ने पहले किसी फारसी इतिहास का अनुवाद किया और फिर अपनी ओर से अंग्रेजों और हैदर अली की मैसूर युद्ध की कहानी उसमें जोड़ दी। इस प्रकार का एक और ग्रंथ बहादुरनामा मिलता है, जिसमें श्रीरंगपट्टम का इतिहास टीपू सुल्तान के युग का बयान किया गया है। इसका रचनाकाल 1798 ईस्वी है। इसके लेखक पृष्ठ संख्या 67 का नाम भी पांडुलिपि में नहीं है। अनुमान है कि यह भी किसी फारसी रचना का अनुवाद है। इस अध्याय को वेल्लोर के एक महान फारसी उर्दू लेखक और कवि मोहम्मद वाकर आगाह के वर्णन पर समाप्त करना उचित होगा, जिनका देहांत 1805 ईस्वी में हुआ। इनकी रचनाएं 30 से अधिक हैं, जिनमें कम से कम 15 उर्दू भाषा में हैं। इनमें अधिकतर कविताएं हैं, लेकिन उनकी विशेषता यह है कि उनकी भूमिकाएं प्रायः उर्दू गद्य में लिखी गई हैं। केवल एक संपूर्ण पुस्तक रियाजुस सियर उर्दू गद्य में है। उनकी गद्य शैली रोचक है और उन्होंने साहित्य चिंतन के संबंध में बहुत सी जानकारी एकत्र कर दी है। उनके विचारों के आधार पर उस समय की साहित्यिक परंपराओं पर तेज रोशनी पड़ती है। लगभग 350 वर्ष के गद्य की यह कहानी इसका खुला हुआ प्रमाण है कि काव्य के मुकाबले में गद्य साहित्य बहुत कम है, और जो कुछ है उसमें भी अधिकतर धार्मिक, नैतिक और सूफियाना विचार पाए जाते हैं। आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो वह भी इन शताब्दियों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना के समझने में सहायक होंगे। जो कथाएं और ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी गई हैं, उनके माध्यम से भी उस युग के जीवन का अनुमान किया जा सकता है। यह कहना अनुचित ना होगा कि पद्य और गद्य का समस्त साहित्य जीवन को एक ही ओर ले जा रहा था और आर्थिक पतन के बाद भी जीवन के शाश्वत मूल्यों में आस्था को संचालित कर रहा था।